आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनम है और आज हम लोग आपकी स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द टेल ऑफ द मेलन सिटी, और इसको लिखा है विक्रम सेठ जी ने। सो ये जो है वो एक पोयम के फॉर्म में है और ये एक तरह की नरेटिव पोयम है। अब नरेटिव पोयम क्या होती है? तो नरेटिव पोयम ऐसा होता है जो बिल्कुल एक स्टोरी की तरह लिखी गई हो, लाइक ऐसी पोयम जो कि एक स्टोरी की तरह लिखी गई हो। आप उसको जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पूरी स्टोरी अनफोल्ड होगी। और इसका आप देखेंगे ये जो पोयम है वो दो दो लाइन में डिवाइडेड है, तो इसको बोलते हैं कपलेट पोएम्स, है ना। तो ये कपलेट में भी डिवाइडेड है। और अब मैं आपको थोड़ा सा विक्रम सेठ के बारे में बता दे रही हूँ। वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स में से माने जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं और उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम उनके बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे कि द गोल्डन गेट बहुत नामी उनकी किताब है, अ सूटेबल बॉय। इनफैक्ट अ सूटेबल बॉय की तो अब उस बुक पे मूवी भी बन रही है। सो ये सारे मतलब वो काफ़ी ज़्यादा कंटेम्प्रेरी भी है, मतलब आज के ज़माने का वो लिटरेचर लिखते हैं और फेमस भी हैं, और उन्हें इनफैक्ट पद्मश्री भी मिल चुका है, साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने फील्ड में एस्टैब्लिश्ड है। सो अब हम लोग इस पोएम में देखेंगे, जो कि ये इनकी जो पोएम की एक बुक है जिसका नाम है द मैपिंग्स, उसका एक पार्ट है। तो ये स्टोरी, ये पोएम जो है वो एक ऐसी स्टोरी बताती है जो कि किस तरह से एक किंग जो है वो इतना ज़्यादा इंसाफ पसंद था, जिसको मतलब सब लोग जो है वो उसको इंसान इस तरह से जानते थे कि उसमें बहुत ज़्यादा इंसानियत है और बहुत ज़्यादा उसको इंसाफ करने का बहुत ज़्यादा शौक था, है ना। तो अब वो उस इंसाफ के चक्कर में अब क्या होता है उसके साथ, और एक उस सिटी का नाम मेलन सिटी कैसे पड़ जाता है वो हम लोग देखते हैं। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रायम्फली वुड स्पैन द मेजर थोरोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग। दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग। The king wrote down the thoroughfare to edify spectators there. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वहाँ का एक जो king था वो न्यायाधीश था, यानी उसको न्याय बहुत ज़्यादा पसंद था, इंसाफ पसंद इंसान था, राजा था वो। और उसने order दिया कि उसको एक thoroughfare construct करो, मतलब जो दो road के बीच से जो रास्ता होता है ना वो construct करो, ताकि वो लोगों के लिए आसानी हो जाए, है ना। तो अब उसने क्या किया कि जो उसने वर्कमैन को अपने जो ऑर्डर दिया था बनाने के लिए थोरोफेयर, उसने उन लोगों ने बना दिया। अब उस चीज़ को वो टेस्ट करने के लिए वो खुद ही गया। आर्क क्या होता है ना, आर्क आपने देखा होगा, जो कि जो पुराने स्ट्रक्चर्स या फिर आप पैलेसेस में जाओगे तो एक बिल्कुल जो उसका रूफ होता है ना वो बिल्कुल सेमी सर्कल में होता है, उस चीज़ को आर्क बोलते हैं। तो अगेन वो उस आर्क से गुजरा ताकि वो खुद जो है वो टेस्ट कर सके कि वो वहाँ से जो उसके स्पेक्टेटर्स हैं या जो भी हैं वो किस तरह से गुजरेंगे और क्या उनके लिए सब सही है कि नहीं है। अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन। द आर्क वॉज बिल्ट टू लो। अ फ्राउन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लैसिड फेस। द किंग सेड दिस इज अ डिसग्रेस। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड। द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वॉज लेट आउट। He passed the king, he gave a shout. Oh king, it was the workman's fault. Oh, said the king and called the halt. So, अब जैसे ही वो उस आर्क से जो उसने बनवाई थी उससे जैसे ही वो राजा गुजरने लगता है, तब उसका क्या होता है कि उसका जो ताज होता है ना वो गिर जाता है और वो गुम हो जाता है। अब इस चीज़ पे किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब वो कहता है कि ये गलती हुई है कि मेरा ताज गिरा है, मेरा क्राउन गिरा है, और इस चीज़ का जो पनिशमेंट है वो जो है किसको मिलेगा, जो हेड बिल्डर है यानी जो चीफ ऑफ बिल्डर्स है उसको मिलेगा, क्योंकि ऑफकोर्स उसी के डायरेक्शन पे सबने ये बनाया है। तब उसको बुलाया गया, राजा के सामने पेश किया गया, और तब तक जो है अब ऑफकोर्स क्योंकि वो न्यायाधीश था तो इसकी सज़ा उसको मिलनी थी, और उसकी सज़ा क्या थी, फांसी। तो सारा इंतज़ाम कर लिया उन लोगों ने कि अब तो उसको बुलाएंगे और फांसी लगा देंगे। लेकिन वो चीफ ऑफ बिल्डर जो है वो कहता है कि महाराज राजा जी, ये तो मेरी गलती नहीं है, बल्कि जो वर्कमैन है यानी जो मजदूर हैं, ये उनकी गलती है। तब राजा ने बोला, उसकी बात सुनी और उसने कहा कि अच्छा तो ठीक है, तो फिर वर्कमैन को बुलाओ यानी मजदूरों को बुलाओ। और फिर राजा वहीं पे डिसीजन के लिए रुक गया। टू द प्रोसीडिंग्स बीइंग जस्ट एंड द प्लासिडर नाउ ही सेड, आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड एंड सेड, ओ किंग, यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। Summon the masons, said the king. The masons stood there quivering. So, अब क्या होता है? अब जो वर्कमैन को यानी जो भी जो कारीगर थे उनको बुलाया गया। तब बोला गया कि अब क्योंकि इसमें से किसी एक की गलती तो नहीं हो सकती, सब लोग ने ही मिल करके इस आर्क को बनाया है, तो क्योंकि मैं जो हूँ न्याय करने वाला हूँ, मैं इंसाफ देने वाला हूँ, तो इस चीज के लिए तुम लोग जितने भी यहाँ पे कारीगर हो, जितने भी मजदूर हो, सबको फांसी लगेगी। तो अब उन लोगों ने भी रिक्वेस्ट करा कि लेकिन महाराज, ये हमारी गलती तो है नहीं, ये तो हम लोग तो बस ब्रिक्स से बनाए। अब ये ब्रिक्स का साइज ही जो है वो गलत साइज था और इस वजह से ये मिस्टेक हुई है। तब राजा आदेश देता है कि ठीक है, तो फिर मेसन्स को बुलाओ। मेसन्स जो है जो कि ब्रिक्स बनाते हैं ना, ब्रिक्स से आपने देखा होगा वो जो मजदूर होते हैं जो दीवार वगैरह बनाते हैं, तो उन्होंने बोला मेसन्स को बुलाओ। और उसके बाद अब ऑफकोर्स मेसन सारे, अब उनको पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है, उनको फांसी लगने वाली है, तो वो बेचारे क्विवर करने लगे, मतलब थरथराने लगे, डर से कांपने लगे। इट वॉज द आर्किटेक्ट, दे सेड, द आर्किटेक्ट वॉज समन्ड। वेल आर्किटेक्ट, सेड हिज मैजेस्टी, आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल बी हैंग्ड, सेड द आर्किटेक्ट। ओ किंग, यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग, यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स when I showed them to you. The king heard this. The king was saw red. In fact, he nearly lost his head. But being a just and placid king, he said, this is a tricky thing. So, अब क्या होता है? अब जो वो masons आते हैं, अब उनको क्या बोला? वो बोलते हैं कि लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है? कि तो architect की गलती है। उसने हमें जिस तरह से जो करने को बोला, हम लोग ने उसका orders follow किया। तब राजा को लगता है कि हाँ ये तो सही बात है, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी उन लोगों के साथ। तो उसने कहा कि ठीक है, फिर आर्किटेक्ट को बुलाया जाए। अब जब आर्किटेक्ट सामने आता है, तब आर्किटेक्ट बोलता है कि लेकिन योर मैजेस्टी, महाराज, ये तो आपको याद होना चाहिए कि जब मैं आपके पास डिजाइन लेके आया था, तब आपने ही मुझसे कुछ करेक्शन इसमें करवाने बोले थे, तो जो करेक्शन आपने बोले मुझे, मैंने उस हिसाब से कर दिया, अब इसमें मेरी क्या गलती है। तब फिर राजा को ये बात याद आती है, और क्योंकि वो न्याय करने वाला था, वो न्यायाधीश था, इस वजह से वो इस चीज से पीछे नहीं हट सकता था या इस बात को झुठला नहीं सकता। तब उसने बोला कि हाँ मुझे याद है, लेकिन क्योंकि मैं किंग हूँ, ये काफी एक पेचीदा सवाल है, बहुत ही ट्रिकी सी चीज है। आई नीड सम काउंसिल, ब्रिंग टू मी द वाइसेस्ट मैन इन द कंट्री। द वाइसेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट, ने carried the royal coat. He could not walk and could not see. So old and therefore wise was he. So, जो महाराज होता है वो कहता है कि क्योंकि मैं किंग हूं, तो मैं ऐसे ही कोई फैसला नहीं ले सकता अपने बारे में, तो मुझे एक काउंसिल की यानी एक हेल्पर की जरूरत है। तो वो ऑर्डर देता है कि मुझे इस सिटी से जो सबसे ज्यादा वाइस मैन है, यानी जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला है, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, उस इंसान को मेरे सामने लेकर गया और वो मुझे इस चीज में मदद करेगा। तब जो भी जो राज दरबारी थे, वो लोग जो है ढूंढ करके एक ऐसे इंसान को लाते हैं जो कि इतना बूढ़ा होता है कि वो ना ठीक तरह से देख पाता है और ना ठीक तरह से चल पाता है। और इसी वजह से, क्योंकि मतलब वो इतना बूढ़ा है, इस वजह से वो कितना एक्सपीरियंस वाला होगा, यही सोच के वो लोग ले आते हैं। But in a quivering voice, he said, the culprit must be punished. Truly, the ark it was that banged the crown off, and it must be hanged. To the scaffold the ark was led, when suddenly a counselor said, how can we hang so shamefully? What touch your head, your majesty? सो वो जो बुद्धिमान इंसान आया था, जो बहुत बुरा था, उसने ये सजेस्ट करा कि भाई गलती हुई है तो पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन गलती किससे हुई है, क्राउन किसने गिराया राजा जी का, तो वो गिराया है आर्क ने, तो जाहिर है तो हम लोग आर्क को छोड़ करके किसी और को हम लोग सजा कैसे दे सकते हैं। तब उसने सजेस्ट करा कि हम लोग आर्क को ही फांसी पर चढ़ा देते। तब अब क्या किया गया, अब आर्क को फांसी देने के लिए तैयार किया गया। एंड देन फाइनली उसमें से लाइक राजा के एक दरबारी ने बोला कि लेकिन हम लोग उस चीज को फांसी कैसे चढ़ा सकते हैं जिसको, जिस चीज ने राजा जी को छुआ है, जिसने महाराज का ताज छुआ है। और ये तो बात थी कि आर्क ने वो तो उसी, क्योंकि उसने छुआ टच करा और इसी वजह से उसका क्राउन गिरा था। तब काउंसलर ये सवाल लेता है। ट्रू म्यूज द किंग, बट नाउ द क्राउड रेस्टलेस वॉज मटरिंग अलाउड। द किंग परसीव्ड देयर मूड एंड ट्रेम्बल्ड एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड, लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट। द नेशन वॉन्ट्स अ हैंगिंग, हैंग मस्ट बी समवन एंड दैट इमीडिएटली। द नूज वॉज सेट अप समवॉट हाई, ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय, but only one man was so tall he fitted, one man that was all, he was the king, his majesty was therefore hanged by royal decree। तो चलो जी, अब क्या होता है, क्योंकि अब उसने बोला कि भाई हम लोग ये कैसे कर सकते हैं कि हम लोग आर्क को फांसी लगा दे क्योंकि उसने राजा को छुआ है। तब अब ये क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं कि चलो अब इस चीज का सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हम लोग हर जितने भी यहाँ पे लोग असेंबल हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, एक वो लोगों को क्या चाहिए था कि उन लोगों को चाहिए था कि जो गुनहगार है, जो कसूरवार है, उसको फांसी लगेगी। तब इस चीज को करने का क्या तरीका था कि जितनी भी उनकी प्रजा थी उन सबकी हाइट जो है वो मेजर की गई। और पॉइंट ये था कि जिसकी हाइट जो है वो उस आर्क से मिल जाएगी, जितना उतना हाइट उसकी होगी, उसी बंदे को फांसी लगेगी। सबकी हाइट को नापा गया लेकिन किसी की भी हाइट वो उस आर्क तक नहीं गई, क्योंकि ऑफकोर्स आप अगर खड़े हुए हो तो आर्क उतना तो ऊंचा होगा ही, वो तो रथ पे था, इस वजह से राजा का सर टकरा गया। तो अब सबकी हाइट नापी गई लेकिन बस एक ही इंसान था जो इतना लंबा था कि वो आर्क तक पहुंच पा रहा था, और वो कौन था, ऑफकोर्स हमारे खुद के महाराज। तो अब जैसा कि वहां का रूल था और वो बिल्कुल न्याय करने वाला था, तो वो जो है सिर्फ न्याय के चक्कर में जो किंग यानी जो महाराज था वो ही अपने आप को फांसी लगवा लेता है। थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन, सेड द मिनिस्टर्स, फॉर इफ इंस्टेड वी हैड नॉट द अनट्रूली टाउन माइट वेल हैव टर्न्ड अगेंस्ट द क्राउन। लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर्स सेड, लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। दे पॉन्डर्ड द डिलेमा, then being practical minded men, sent out the heralds to proclaim in his former majesty's name। तो अब क्या होता है कि अब जो उनके जितने भी ministers होते हैं, जो प्रजा होती है, वो इस बात के लिए दुखी नहीं है कि उस उनके king ने जो है वो फांसी लगा ली, बल्कि इस वजह से खुश है कि thank god के जो राजा था उसने न्याय किया और अब जो है वो न्याय की जो प्रथा है वो कंटिन्यू रही। और क्योंकि अगर अगर राजा ऐसा नहीं कर पाता तो क्या था, वो पूरा जो उसकी प्रजा है वो राजा के खिलाफ हो जाती, क्योंकि राजा जो है इतना न्याय के बारे में बोलता है और वो अगर यहाँ पे आकर के अन्याय कर देता तो ये उसके खिलाफ चला जाता। तब अब सब लोग राजा को प्रेस करने के लिए कि उसने न्याय के चक्कर में उसने खुद को भी, उसकी अपनी खुद की जान को कुछ नहीं समझा, तो सब बोलने लगे लॉन्ग लिव द किंग इज डेड, यानी किंग की मौत हो चुकी है। अब एक और सवाल पैदा होता है कि कोई भी किंगडम बिना किंग के तो होगी नहीं, तब अब क्या किया जाए, अब तो किंग हमारे मर गए, अब उनके जगह पे नेक्स्ट जो है वो क्या आएगा, कौन सा क्राउन आएगा। तब अब जो है वो क्या किया जाता है कि हर जगह जो वो किंग थे इससे पहले वाले उनके नाम पे सब जगह मैसेज भेजा जाता है कि अब जो है वो नए किंग का सिलेक्शन होगा और उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, ये सब जगह से डिस्कस किया जाता है। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट will choose the ruler of our state. As in our custom, this will be enforced with due ceremony. A man passed by the city gate, an idiot. The guards cried, "Wait! Who is to be the king? Decide." "A melon," the idiot replied. This was his standard answer to all questions. He liked melons. "You are now our king," the minister said, crowning a melon. They then led, carried the melon to the throne and reverently set it down. So, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ का जो custom था उसके according जो भी जो उस gate से first इंसान आएगा उससे पूछा जाता कि आपके मुताबिक आपके अकॉर्डिंग कौन जो है वो किंग बनना चाहिए. अब ऐसा होता है कि उस दरवाजे से जो पहले आने वाला इंसान होता है वो जो है वो एक इडियट होता है. इडियट मतलब जो थोड़ा पागल, जो दिमाग उसका सही जगह पे ना हो, दिमाग से जो पैदल होता है वो उसमें से एक इडियट जो है वो आता है. अब उसको क्या था कि उसको मेलन्स जो थे यानी खरबूजा उसको बहुत ज्यादा पसंद था और इस वजह से वो हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो बोलता था खरबूजा. तब अब जो है अकॉर्डिंग टू द कस्टम जो उन लोगों की रीत थी उस हिसाब से अब वो पहला ही बंदा था जो उस गेट से आया था और ऑफ कोर्स जो गार्ड्स हैं फिर रीत के मुताबिक उस इडियट से ही पूछते हैं, उस पागल से पूछते हैं कि बताओ हमारा किंग कौन होगा. तो वो हर आंसर का जवाब मेलन देता था और उसने इस आंसर का भी जवाब जो है वो मेलन ही दे दिया. और अब तो वो कुछ हो नहीं सकता था. अब जो है उस जगह का जो किंग था वो अब मेलन ही बन जाता है. अब जो वहाँ के मिनिस्टर्स होते हैं वो उस मेलन को ताज पहना देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम ही हमारे राजा होगे. जस्ट इमेजिन कि खरबूजा उन लोगों का राजा था जस्ट बिकॉज कि किसी एक पागल इंसान ने कह दिया कि हमारा राजा कौन होगा. हमारा राजा भाई खरबूजा होगा. तो वो खरबूजा हो गया. This happened years and years ago. When now you ask the people, so your king appears to be a melon. How did this happen? They say, well, on account of customary choice, if his majesty rejoice in being a melon, that's okay with us, for who are we to say what he should be as long as he leaves us in peace and liberty. तो यहाँ पे ये जो incident है वो बहुत पुराना एक किस्सा है ना. तो अब भी जब भी उन वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो प्रजा है, अभी भी अगर हम लोग वहाँ उन लोगों से पूछते हैं कि भाई तुम्हें कैसा लगता है कि तुम्हारा राजा जो है वो एक मेलन था, एक खरबूजा था, तो तुम लोगों को थोड़ा अजीब नहीं लगता है? तब जो वहाँ के लोग हैं वो ये रिप्लाई करते हैं कि हम लोगों को उससे मतलब नहीं है कि कौन राजा है और वो राजा जो है वो किस तरह का है. हम लोगों को बस इतने से मतलब है कि वो जो हमारे राजा हैं वो हमें तंग नहीं करते हैं, हमें परेशान नहीं करते और हमें शांति से रहने देते हैं. और हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखता है, मायने रखता है, वो बस इतनी ही सी बात है. तो हमें सच में नहीं फर्क पड़ता है कि जो हमारे राजा हैं वो अपने आप को मेलन बुलाएं या खुद एक मेलन राजा हो. हमें इस चीज़ से रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता है एज लॉन्ग एज हमारे अफेयर्स में यानी हमारे कामों में वो लोग दखल नहीं दे रहे हैं और हमें आराम से अपनी जिंदगी जीने दे रहे हैं. ओके. द प्रिंसिपल्स ऑफ लेसेफेयर सीम टू बी वेल एस्टैब्लिश्ड देयर. सो यहाँ पे ये जो वर्ड आता है लेसेफेयर, इसका मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट या एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो, कोई भी दखल अंदाजी नहीं हो, सब अपने अपना काम करे और कोई यू नो किसी के काम में अड़ंगा ना डाले, टांग ना अड़ाए और वो सब लोग मतलब यू नो एवरीबडी इज ऑन देयर ओन, हर कोई अपने ऊपर निर्भर रहे और एक दूसरे के काम में दखल ना दे. और ऐसी गवर्नमेंट बेसिकली जो कि आपको वो हर काम आज़ादी से करने दे और ज़्यादा आपके आपकी प्राइवेसी में नहीं घुसे, ना ही आपके कामों में ज़्यादा बताए कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. तो यहाँ पे विक्रम सेठ कह रहे हैं कि ऐसी गवर्नमेंट का जो चलन था वो उस वक्त से है और उसी वक्त से अब तक एस्टैब्लिश रहा है. सो यहाँ पे हमारी पोएम हो जाती है ख़त्म. तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ऐसे अगर आप देखोगे ये पोएम जो है वो एक बहुत ही फनी पोएम है कि आप खुद ही सोचो किसी ऐसे प्रजा का जो जिसका राजा जो है वो एक खरबूजा हो या कोई भी फ्रूट हो या कोई भी ऐसी नॉन लिविंग थिंग हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये पोएम जो है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक होनहार राइटर थे विक्रम सेठ, हैं एक्चुअली, तो इन्होंने ये अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आजकल की एक पॉलिटिक्स पे या पॉलिटी पे या जिस तरह से देश चलाए जा रहे हैं उस चीज पे एक चोट की गई है। ये बहुत ही एक ह्यूमरस वे में ये एक सटैरिकल पोएम है। सटैरिकल मतलब कैसे कि मजाक में आपने अपनी सारी बात बोल दी है ना, सटायर थ्रो कर आप, तो ये एक सटैरिकल पोएम है कि उन्होंने कुछ नहीं भी कहा और सब कुछ कह दिया। तो आज भी आप देखो हम लोग उसी चीज में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हमें नहीं पता है कि हमारा, अभी आप देखो अगर आप किसी फार्मर से पूछोगे, उसके लिए नहीं फर्क पड़ता है कि उसका प्रेसिडेंट कौन है, उसका प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसको अपना काम करने में ज्यादा दिलचस्पी होती है। जब तक वो अपने बारे में खुश है और वो खाना उसको मिल रहा है, तब तक जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हायर अथॉरिटी में या हायर पोस्ट में कौन लोग हैं और वो क्या काम करते हैं, किस तरह से उनका चुनाव हुआ, उसको इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। और यही जो है इस तरह से हमें बताया गया है कि ये कहीं ना कहीं बेवकूफी है ना, कि हम लोग एक मेलन तक को राजा मानने के लिए तैयार हैं जस्ट बिकॉज कि वो हमें आजादी देता है कि आप कुछ भी करो। जाहिर सी बात है एक मेलन जो है वो हमें ना आदेश दे सकता है ना ही हमारे मैटर्स में इंटरफेयर कर लेता है, तो कहीं ना कहीं मेलन जो है उनके लिए एक बहुत ही सही राजा भी साबित हुआ कि उन लोगों को जो चाहिए था वो राजा जो है मेलन यानी उनको वो चीज दे रहा था, वो उनको पीसफुली रहने का ये दे रहा था, इजाजत दे रहा था, वो ना ही उनके कामों में जो है वो दखल अंदाजी कर रहा था कि नहीं तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। तो राजा भी वहां पे खुश और प्रजा भी खुश। और बीच में अगर आपने देखा ये मिनिस्टर्स ने ही जो है कहीं ना कहीं राजा को बोला कि नहीं, आई थिंक के राजा को इस चीज का पालन करना चाहिए और राजा को फांसी हो जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो जो मिनिस्टर्स यानी जो मिडिल मैन है वो भी प्रजा को घुमाने में या फिर जो हायर अथॉरिटी है उनको कहीं ना कहीं घुमाने में ये बहुत अच्छे होते हैं। और आज के ये पोएम जो अगर आज के हालात से हम लोग कंपेयर करके देखें तो भी आप देख सकते हो कि जो बाकी के मिनिस्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, वो बताते हैं और वो ही जो है वो जो प्रजा है यानी आज के जो हमारे लोग हैं उन लोगों को वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमारा जो रूलर होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये काफी अगर आप समझो तो इस पोएम में बहुत कुछ छुपा हुआ है, और अगर आप ऐसे ही देखो तो बस ये एक ह्यूमरस पोएम है ना। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नरेट द टेल ऑफ मेलन सिटी इन योर ओन वर्ड्स। सो ये तो पोएम के फॉर्म में था, अगर आपको जो है अपने वर्ड्स में बताना हो कि ये इस कहानी को तो आप किस तरह बताएंगे, एंड आई थिंक ये इस तरह से आपको बताना चाहिए कि मतलब आजकल से रिलेट करके आप लोगों को स्टोरी को दिखाना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक सिंबोलिज्म दिखता है हमें, है ना, कि एक मेलन जो है, मेलन क्या था, एक राजा जो है आज के डेमोक्रेसी में कौन होगा, जो कि हायर पोस्ट पे जो लोग हैं जो हमें डिक्टेट कर रहे हैं या जो हमें बता रहे हैं कि हमें किस तरह से अपना लाइफ जीना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो राजा उससे रिलेटेड है। जो मिनिस्टर्स हैं वो आज के ज़माने में किसको दर्शाते हैं, और जो वहाँ की प्रजा है, जो आर्क है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंस होल्ड करती है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है द टेल ऑफ मेलन सिटी को अपने वर्ड्स में किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे, और आप बहुत ही इस क्वेश्चन के साथ काफी क्रिएटिव भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इम्प्रेशन वुड यू फॉर्म ऑन अ स्टेट वेयर द किंग वाज जस्ट एंड प्लेसिड। तो हम लोगों ने एक ऐसा इंसिडेंट तो देख ही लिया इस पोएम में जहाँ पे जो किंग है वो जस्ट एंड प्लेसिड होता है, यानी एक न्याय पसंद होता है, उसके साथ क्या होता है ना। तो आपको न्याय पसंद होना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस चीज में अपना दिमाग यूज ना करना और खुद ही फांसी पर चढ़ जाना, ये थोड़ा मतलब एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि नहीं। तो अगर ऐसा होता है और जो किंग जो है वो हर टाइम बस सिर्फ न्याय 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 पे होता है, वो कहीं ना कहीं वो जो उसके मिनिस्टर्स हैं वो उस चीज़ को बात को घुमा सकते हैं, बात पलट सकते हैं, वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना। और जहाँ का जो वहाँ की प्रजा है वो भी थोड़ा सा हर वक्त जो है उसको न्याय चाहिए छोटी, मतलब देखो कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको लेट गो भी कर देनी चाहिए, है ना, कि हर टाइम पे न्याय कोई ज़रूरी नहीं है। न्याय करने वाला या देने वाला वो बिल्कुल हमेशा हर बार सही फैसला दे, तो हम लोग किसी एक इंसान पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, है ना। जिस तरह से किंग ने न्याय कर दिया, हम लोग अब आज के ज़माने में क्या होता है कि अगर जज भी है तो अगर बड़ा केस है तो वहाँ पे एक बेंच ऑफ जज यानी बहुत सारे जजेस मिल करके एक फैसले पे आते हैं, है कि नहीं। किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक किंगशिप का सवाल है तो वहाँ पे तो भाई किंग ही सब कुछ होता है। और तो वो क्या होता है, अब देखो अब उसने उस बूढ़े इंसान की एडवाइस ली, तब उस बूढ़े इंसान ने क्या कहा कि कार को फांसी दिला दो। आप खुद सोचो कि एक ब्रिक से बना हुआ एक ईंटे की दीवार को आप फांसी कैसे दे सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा लॉजिकल भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ अकॉर्डिंग टू यू कैन पीस एंड लिबर्टी बी मेंटेन्ड इन अ स्टेट। सो यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने क्या कहा कि जब तक मुझे आज़ादी है और शांति है, मुझे किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो अभी कुछ लोग जो हैं इस बात पे ये करते हैं कि नहीं नहीं अभी, क्योंकि कुछ लोग डेमोक्रेसी से परेशान हो जाते हैं, लोकतंत्र से परेशान होकर के वो कहते हैं कि नहीं नहीं जो तानाशाही है वही सही है या फिर जो किंगशिप थी वही सही है। तो वो ओपिनियन जो है वो डिफर कर सकता है, लेकिन अगर आप देखो तो एक ऐसा स्टेट जहाँ पे जो भी कार्यकर्ता है वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, करप्शन कम है, जो पुलिस है वो अपने अच्छी तरीके से काम कर रहा है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई एक दूसरे का जो हक है वो नहीं छीन रहा है, तो उस तरीके से भी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो कर के भी जो है वो पीस एंड लिबर्टी जो है वो स्टेट में एस्टेब्लिश हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें इस तरह का तरीका अपनाना पड़े न्याय का जिस तरह से इस कहानी में इस किंग ने अपनाया है, कि नहीं। आप एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रखो। आप में से कई लोग जो है वो यूपीएससी करने का सोच रहे होंगे, तो यूपीएससी आपको क्या बनाती है, एक आईएएस ऑफिसर है। तो एक आप बिल्कुल सही आईएएस ऑफिसर हो, आप अच्छे से अपने ज़िले का अपने इलाके का जो है आप टेक केयर करो, उनके वेलफेयर के लिए काम करो, तब लोग जो हैं ऐसे ही जो है वो एट पीस रहेंगे यानी शांतिपूर्वक रहेंगे, और उनके लिए आप अच्छी तरह मतलब वो अपनी आज़ादी में रहते हुए दूसरों की आज़ादी ना छीने, इस चीज़ को सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है ना। क्वेश्चन नंबर 4, सजेस्ट अ फ्यू इंस्टेंसेस इन द पोएम विच हाईलाइट ह्यूमर एंड आयरनी। तो ऐसा बहुत जगह हमें मिलेगा इस पोएम में जो कि ह्यूमर यानी मतलब हमें हंसाती भी है और साथ ही साथ आयरनी भी है। तो आप देखो कि बहुत सारे इंसिडेंट, जैसे कि सबसे पहला तो कि वो किंग जो है वो किस तरह से वो एक मतलब वो झुका भी नहीं और उसे दिख रहा होगा ना कि वो जा करके टकरा जाएगा उस आर्क से, लेकिन फिर भी वो आर्क से वो गुजरा और उसके बाद उसका क्राउन गिर जाता है। तो एक किंग का क्राउन गिरना कहीं ना कहीं आयरनी भी है और ह्यूमर भी है उसमें। और फिर जिस तरह से लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे थे कि नहीं नहीं मैंने नहीं, ये तो उसका गलती है, ये तो उसकी गलती है, तो उसका काम है, तो ये भी हमें जिस तरह से घूम फिर करके इल्ज़ाम जो है वो वापस किंग पे ही लग जाता है, ये भी कहीं ना कहीं आयरनी भी है और ह्यूमरस भी है। और फाइनली लास्ट में कि किस तरह से एक मेलन को किंग बना दिया जाता है, ये सबसे बड़ा एक हाई पॉइंट है मजाक के लिए, है कि नहीं। कि आप खुद सोचो ये कितना अजीब है ये बात सोचना कि कोई मेलन जो है वो एक किंग है और वो जो है वो अपनी प्रजा है उसकी और वो उस पर रूल कर रहा है ना। तो ये सारे कुछ इंस्टेंसेस हैं जो कि दर्शाते हैं ह्यूमर एंड आयरनी। क्वेश्चन नंबर 5, द टेल ऑफ मेलन सिटी हैज बीन नरेटेड इन अ वर्स फॉर्म। दिस इज अ यूनिक स्टाइल विच लेंस एक्स्ट्रा चार्म टू एन एक्सीडेंट टेल। Find similar examples in your language, share them in the class. So, मैंने आपको इस पोएम के बारे में यही कहा था कि एक तो कपलेट फॉर्म में है और एक नरेटिव फॉर्म में है ना। कि वो पोयम में आपको क्या होता है, वो आपको इनर मीनिंग ढूंढनी होती है कहीं ना कहीं, एक वर्ड के पीछे उस चीज का छुपा हुआ क्या होता है, वो सारी चीजें। लेकिन ये नरेटिव पोयम है, ये आपको बिल्कुल एक स्टोरी की तरह पार्ट बाय पार्ट आपको बताएगी, और ये छोटे छोटे पार्ट में यानी कपलेट में दो 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 लाइन में आप देखोगे ये पोयम बताई गई है। तो अब ये जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, ये एक तरह का आप समझ लो कि एक फोक टेल टाइप है ना, द टेल ऑफ द मेलन सिटी एक फोक टेल है। तो ये आपके खुद के लैंग्वेज में आप ऐसे किसी पोएम को पढ़े हो या जानते हो तो ये तो आप पे डिपेंड करता है, और आप इसके बारे में फाइंड आउट करो कि आपके मदर टंग में ऐसी कोई पोएम है या स्टोरी है, और सब लोगों से शेयर करो। तो ये काफी ज्यादा ह्यूमरस पोएम भी थी और काफी कुछ सिखा भी देती है हमें, है कि नहीं। और इसमें हमें दिखता है कि विक्रम सेठ जो है वो कितने अच्छे राइटर है कि नहीं, इसका एक एक वर्ड, एक इसका जो थीम है खुद की, वो ही कितनी डिफरेंट है और कितनी कंटेम्प्ररी है, मतलब आज के जमाने से मेल खाती हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा स्नैपशॉट का सारा पोर्शन हो जाता है खत्म, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इस पोएम को वापस पढ़िए, आप इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, और इसको एक क्रिएटिव माइंडसेट से पढ़िए। ओके, थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।